दिन भर रविवार 4 अक्टूबर मैं हूं निखिल रंजन। बिहार चुनाव में बीजेपी का विरोध करने चले वकील राम जेठमलानी, लोगों से कहा नीतीश कुमार को वोट दें।
मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं इतना वकील होकर मैं अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी के हाथ में कैसे आ गया।
अखलाक अहमद के परिवार से लखनऊ में मिले अखिलेश यादव, बीजेपी नेता ने समाजवादी सरकार पर लगाए आरोप। फैला उजियारा में आज कहानी सिख धर्म की नींव रखने वाले गुरु नानक देव की।
मनहाली किरसाणी करणी सरम पाणी मन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश।
शशांक मनोहर को दूसरी बार मिली बीसीसीआई की कमान, क्या होंगी चुनौतियां बताएंगे खेल की खबरों में, लेकिन सबसे पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हो। जेठमलानी ने पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि अगर मैं वोट दे सकता तो मैं नीतीश कुमार को वोट देता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मोदी हार का स्वाद चखें। जेठमलानी ने कहा कि मैं अंततः इन फर्जी लोगों को सत्ता से बाहर देखना चाहता हूं। वहीं बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने ट्वीट कर जेठमलानी को जवाब देते हुए कहा कि विनायक सेन जैसे नक्सलियों, कश्मीरी अलगाववादियों और इंदिरा गांधी के हत्यारों तक की वकालत करने वाले राम जेठमलानी अब चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की पैरवी करना चाहते हैं। तुर्की और ब्रिटेन ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में रूस के सैनिक अभियान की आलोचना की है। लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि रूस के हमलों से चरमपंथ और कट्टरता बढ़ेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि रूस एक गंभीर गलती कर रहा है। सीरिया में रूस के हमले तुर्की को बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैंने ये बात पुतिन से मॉस्को में और फिर फोन पर भी बातचीत के दौरान कही थी। रूस एक गंभीर गलती कर रहा है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि इससे रूस और अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि रूस ने ये कदम तुर्की के विरोध के बावजूद उठाया है और इस पर तुर्की चिंतित है। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्था मेडिसिन्स सेंस फ्रंटियर्स एमएसएफ के कर्मचारियों ने अफगानिस्तान के कुंदूज में अपने अस्पताल को छोड़ दिया है। एमएसएफ के मुताबिक अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन नाटो ने अस्पताल पर हमला किया था, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि एमएसएफ का कहना है कि उसके कर्मचारी कुंदूज के अन्य अस्पतालों में घायलों का इलाज कर रहे हैं। वहीं कुंदूज के ज्यादातर इलाकों पर अब अफगान सेना का कब्जा हो चुका है। दादरी में गोमांस पकाने की अफवाह पर मारे गए अखलाक अहमद के परिवार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अखलाक के परिवार को 45 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का ऐलान किया और कहा कि दोषियों को सजा दी जाएगी। इस घटना में अखलाक के बेटे दानिश बुरी तरह घायल हो गए थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले दिनों दादरी में बिसाहड़ा गांव में गोमांस खाने की अफवाह के कारण अखलाक की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। अफ्रीकी देश बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा में 8 लोगों की हत्या कर दी गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां चुनावी लहर चारों तरफ नजर आ रही है। आज पटना में एनडीए के एक विरोधी की आवाज गूंज रही है, जो कभी उनकी वकालत करता रहा है। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली की जमकर आलोचना की है और बिहार के लोगों से नीतीश कुमार को वोट देने के लिए कहा है। क्या है उनकी नाराजगी, आइए उन्हीं की जुबानी सुने।
प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। ये जो मैंने इल्जाम और वायदे किए हैं अपने आपके लीडरों के साथ, वो मेरा प्रायश्चित का एक दक्षा है, क्योंकि मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं इतना वकील होकर मैं अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी के हाथ में कैसे आ गया। मैं ये आप समझो जेनरली कहता हूं कि आई एम अशेम्ड दैट अ मैन विथ माय इंटेलिजेंस became a victim of the fraud of these people, and I promoted these fraudulent people. Ultimately, I wish to knock out these people from the position of power, which they are trying to see, and Bihar should be the starting point.
चुनाव की गर्मजोशी का जायजा लेने के लिए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी भी आज पटना पहुंच गए हैं और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करके पूछते हैं कि क्या कुछ उन्होंने महसूस किया है। सलमान रावी, स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी रेडियो पर कार्यक्रम में। और आप जब पटना पहुंचे तो वहां क्या कुछ देखा है आपने अभी तक?
जी बहुत शुक्रिया, बस थोड़ी देर पहले ही मैं पहुंचा हूं यहां पर, और आवाजें जो लाउड स्पीकर की अमूमन जैसा लगता है कि भाई वो चुनाव का माहौल चूंकि पटना में अभी है नहीं, इसलिए यहाँ वो आवाजें तो नहीं है, लेकिन पोस्टरों से पटा हुआ है पटना शहर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए, एक तरह का पोस्टर वार है ये, बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं, बदलेगा बिहार, बदलेगी सरकार, तो इस तरह का नारा बीजेपी दे रही है, तो कहीं नीतीश कुमार के प्लेकार्ड्स हैं, बड़े बड़े पोस्टर हैं जो कह रहे हैं कि झांसे में ना आना, जुमलों में ना आना, तो ये जो है बहुत ही समझिए कि बड़ा रोचक यहाँ पर एक वो लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है, जाहिर सी बात है कि महागठबंधन में भी पूरी झोंक रखी है, और रैलियों का भी दौर बड़े जोर शोर पर है। आज अमित शाह भी थे कटिहार में और उन्होंने निशाना साधा जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर, और उन्होंने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी के पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है नीतीश कुमार ने, और अब जिस जंगल राज के खिलाफ में उन्होंने सरकार बनाई थी, अब वो जंगल राज टू लेकर आ रहे लालू यादव के साथ। तो वहीं कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी भागलपुर से ही उन्होंने अपने जो चुनावी सभा है उसकी शुरुआत की, चुनावी दौरे की शुरुआत की, वहां भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। और बिहार में एक चीज है कि लालू प्रसाद यादव का जो बीफ को लेकर दिया गया बयान, ये समझिए कि वो जो दादरी का मामला है वो अब उसकी जो राजनीति है वो खिसक कर बिहार आ गई है, और लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में आपको याद होगा बयान दिया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू भी बीफ खाते हैं, इसको लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है, पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये समझ लीजिए कि बिल्कुल अब लगता है कि बिल्कुल चुनाव का जो माहौल है वो बिल्कुल अपने शबाब पर है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से काफी रोचक है यहाँ लोगों के लिए।
बहुत शुक्रिया पटना से सलमान रावी इस पूरी जानकारी और वहाँ के माहौल के बारे में बताने के लिए, और हम आपके पास अगले कार्यक्रम में भी आएंगे। आपने जैसा कि सलमान रावी से सुना कि दादरी का जो मामला है वो पटना पहुंच गया है, तो दिल्ली से सटे दादरी में कथित रूप से गोमांस खाने की अफवाह पर भीड़ के हाथों पीट पीट कर मार डाले गए अखलाक अहमद का परिवार आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री ने उन्हें सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 45 लाख रुपए के चेक मुआवजे के तौर पर इस परिवार को दिए हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा,
इनके परिवार से मुझे मिलने का मौका मिला और इस दुख की घड़ी में जो दुख बांट सकते थे, जो उन्होंने खोया है परिवार का सदस्य, वो अब कोई लौटा नहीं सकता, लेकिन उनके दुख में हम लोग शामिल हैं, और पूरे परिवार के सदस्यों को मैंने भरोसा दिलाया है कि उनके साथ न्याय होगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून की तरह कार्रवाई होगी। परिवार दुखी भी है और परेशानी में भी है कि जिस गांव में रहते थे सब सदस्य, और आज से नहीं जाने कब से एक दूसरे के साथ व्यवहार भी अच्छा था, लेकिन पता नहीं ये जहर किसने घोल दिया। माँ है, उनकी बेटी है, भाई है, ये इतना बड़ा दुख इनके घर पे आया है, इनके ऊपर दुख है, ये सोच भी नहीं सकते थे ऐसा हो जाएगा।
ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और इस घटना पर नेताओं के बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। दादरी के बगल में है सरदाना, और वहां के विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम आज दादरी पहुंचे और अखिलेश यादव की सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा,
यहाँ की सरकार जहाज में बैठा के ले गई, वो जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी को जहाज में बैठा के ले गई थी, ऐसे गाय के काटने वालों को भी बैठा के ले गई। नहीं, कोई यहाँ उनके घर में नहीं है, पूरे सबको सरकार ले गई। ये तो बहुत सस्ता सा इल्जाम है कि जब भी दंगा हो, जब भी कोई ऐसी घटना हो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर डाल दो, ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार का पुराना काम है। संजय राणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और रहेंगे, और महेश शर्मा जी के साथ अगर फोटो थी तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? मरने में भी यहाँ की सरकार अलग अलग कानून बनाती है। अभी मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए, आपको पता है और मीडिया से भी मेरी ये शिकायत है, क्या आपको पता है इस सारे मामले में एक आदमी के गोली भी लगी है, संजय राहुल यादव के गोली लगी है, क्या आपने उसकी खबर चलाई?
सरदाना के विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम दादरी में थे और वो अखिलेश यादव की सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे थे। उधर मुंबई में शीना बोरा हत्याकांड में गिरफ्तार उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी को होश आ गया है। दो दिन पहले उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए मैंने कुछ ही देर पहले स्थानीय पत्रकार अश्विन अघोर से बात की।
इंद्राणी मुखर्जी को दो दिन बाद आज होश आया है और जेजे हॉस्पिटल के डीन जो है डॉक्टर टीपी लाहा ने, उन्होंने बताया है कि अब उनकी कंडीशन खतरे से बाहर है और फोरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक उन्हें कोई किसी भी दवाई का ओवरडोज नहीं हुआ था। तो ये सब दो दिन में हुआ है और अब जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो है वो नए रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनकी हालत अभी खतरे से बाहर है।
तो क्या कहना है डॉक्टर का, अगर ओवरडोज नहीं था तो ये क्या वजह थी उनकी बेहोशी की?
अब इसकी जांच हो रही है और बाकी जो रिपोर्ट्स उनके मांगे गए थे जैसे गैस्ट्रिक कंटेंट्स का उनका जो रिपोर्ट था वो आने में अभी 3-4 दिन और लगेंगे, उसके बाद ही उसका पूरा पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि जेजे के डॉक्टर्स भी ये मान गए हैं कि उनको कोई दवाइयों का ओवरडोज नहीं हुआ था।
जेल के जो अधिकारी हैं, क्या उनके खिलाफ कोई लापरवाही की बात कही जा रही है?
फिलहाल तो इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आईजी प्रिजंस जो है महाराष्ट्र के विपिन कुमार सिंह, वो खुद इस मामले की जांच करेंगे और 7 दिन में रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। उसके बाद ही जो है किसी की जिम्मेदारी तय होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी।
उनको अस्पताल से कब तक छुट्टी दी जाएगी?
उनको अस्पताल से 2-3 दिन बाद छुट्टी मिलने की चांसेस है। डॉक्टर लहाने के मुताबिक अभी उनको 2-3 दिन और अस्पताल में रखकर इलाज किया जाएगा और उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया जाएगा।
शीना बोरा हत्याकांड में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी को होश आ गया है और अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी दे रहे थे अश्विन अघोर। ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। और अब एक खास रिपोर्ट। कर्नाटक के यादगीर जिले में वहाँ के गांव हंचिनाल से एक संवेदना यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने शुरू की है। सूखे की मार से जूझ रहे गांव में बीबीसी भी किसानों की समस्या की पड़ताल कराने के लिए पहुंचा है। यात्रा के पहले पड़ाव में बीबीसी ने जायजा लिया हंचिनाल गांव का। यहाँ कुछ दलित काश्तकारों से मुलाकात हुई। खेती से जुड़ी मजदूरी ही इनकी रोजी रोटी है, लेकिन रोजी कमाने के लिए इन्होंने एक अनोखा काम अपना रखा है। सुनिए बीबीसी संवाददाता अजय शर्मा की रिपोर्ट।
धपली की इस ताल को सुनते ही क्या आपको किसी अपशगुन का एहसास होता है? भूख से जूझते गांव हंचिनाल में मुझे तो ऐसा ही लगा, मानो किसी की मौत हो गई हो। ये भी सच है कि ये ढपली तभी बजती है जब हंचिनाल में किसी की मौत होती है। इसे ये लोग ढपलू कहते हैं।
पड़ता रहल रे, 200 कोड़े 300 कोड़े 500 कोड़े पड़ता रहा।
जो गाँव में जो किसी मर गई इसका टाइम में हम लोगों को ये ऑर्डर देता है म्यूजिकल बजाने के लिए। उस टाइम में एक एक आदमी एक एक तरह रेट देता है, मैक्सिमम 500 रुपये देता है। वो हम लोग जो 8 लोग हैं हमारा घर में, हमारा फैमिली में, हम सब लोग इसको बांट लेते हैं। वो जो अमाउंट जो है वो उसी टाइम में मिलता है जब किसी ने मर गया और कुछ फीस्ट होता है, और कुछ कभी भी नहीं मिलेगा।
हालांकि इसी ढपलू से कुछ और तालें भी निकलती हैं खुशी की, जो सिर्फ हमें सुनाने के लिए ही थी। मगर ऐसी खुशी के मौके हंचिनाल को बहुत कम मिलते हैं। 2 साल से जब सूखा हो तो कौन शादी करेगा और कौन मनाएगा खुशी? हंचिनाल के मर्द धीरे धीरे गांव छोड़ रहे हैं या छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं। पीछे रह गए हैं बुजुर्ग, इसलिए मौतें अक्सर सुनाई देती हैं और खुशियां बेहद कम। मगर भूख रोज लगती है, लेकिन ढपली रोज नहीं बजती, इसलिए लक्ष्मण और भीम राय को रोज कोई नहीं बुलाता। लक्ष्मण के परिवार में 3 और भीम राय के परिवार में 5 सदस्य हैं, जिन्हें पालने के लिए उन्हें मजदूरी भी करनी पड़ती है। यूं तो हंचिनाल के आम किसान की हालत भी दलित से कम नहीं, मगर भीम राय और लक्ष्मण के घरों को देखें तो भूख की तस्वीर उभरती है। छोटे छोटे चूल्हे, खुली और खाली हांडियां जिनमें पकाने को अनाज नहीं, और दरवाजे के सहारे दीवार पर लटकी ढपली। यही ढपली इस घर में चूल्हा जलाती है, मगर दोनों जानते हैं कि उनकी खुशी किसी के दुख पर ही निर्भर है। अजय शर्मा, बीबीसी, हंचिनाल गांव, जिला यादगीर, कर्नाटक।
और अब वक्त है साप्ताहिक कार्यक्रम फैला उजियारा का। प्रोफेसर सुनील खिल्लानी की श्रृंखला इनकार्नेशंस का हिंदी संस्करण। आज हम इसकी 13वीं कड़ी सुनवाने जा रहे हैं, जो गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक ने महात्मा बुद्ध के बौद्ध और महावीर स्वामी के जैन धर्म की तरह ही एक नए सिख धर्म की नींव रखी थी। इसका हिंदी रूपांतरण कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा।
हम भारतीय भोजन को लेकर बहुत नुक्ताचीनी करते हैं। भोजन में क्या क्या चीजें हैं, किसने पकाया है, किसने परोसा है, वगैरह वगैरह। नुक्ताचीनी की इस प्रवृत्ति का मूल हमारी जाति व्यवस्था में है, शुद्धता अशुद्धता से जुड़े इसके निषेधों में है, और भोजन पकाने, झूठी थाली उठाने और बर्तन धोने से जुड़े अपमानजनक नियमों में है। 15वीं सदी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने लंगर की शुरुआत की और इन नियमों की धज्जियां उड़ा दी। लंगर यानी एक साथ मिलजुल कर भोजन करना। गुरुद्वारों में, जैसे यहाँ दिल्ली के गुरुद्वारा नानक प्याऊ में, आने वाले हर इंसान को सेवादार भोजन परोसते हैं और यहाँ सभी एक साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। लंगर में सब बराबर है और ये जाति की जकड़नों को दूर करता है।
Looking at the people, it really is a mix. There are some people who are well dressed in smart new winter sweaters.
यहाँ लंगर खाने बैठे लोगों में कुछ तो बेहद स्मार्ट और नए वस्त्रों में सजे धजे हैं, लेकिन बहुत से लोग करोल बाग या फिर मॉडल टाउन से आए गरीब तबके के लगते हैं। यहाँ समाज का हर वर्ग मौजूद है। नानक के धर्म का एक जो मूलभूत सिद्धांत इसे बाकी सभी भारतीय धर्मों से अलग करता है, वो है सभी सामाजिक समूहों और स्त्री पुरुष के बीच समानता में विश्वास। नानक द्वारा शुरू किए गए आचार व्यवहारों में गुथा हुआ ये विश्वास आज भी सिख धर्म के केंद्र में है, खासकर लंगर में, जहां सभी स्त्री पुरुष, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या आर्थिक वर्ग के हों, मिलकर भोजन करते हैं। लेकिन सिख धर्म का ये विचार भारतीय इतिहास में हमेशा सहज स्वीकार्य नहीं था। 1984 में भारतीय सेना ने सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर धावा बोल दिया। स्वर्ण मंदिर सिख उग्रवाद का गढ़ बन गया था। इस हमले में काफी लोग मारे गए, हालांकि मृतकों की सटीक संख्या को लेकर मतभेद हैं। 1984 की घटनाओं ने एक पीढ़ी पहले की और भी दर्दनाक यादें ताजा कर दी, जब 1947 में भारत विभाजन के समय हुई सांप्रदायिक हिंसा और ब्रिटिश साम्राज्य की बेपरवाही के चलते मानवता को इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खूनी विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। गुरु नानक का जीवन और उनके द्वारा स्थापित धर्म परोक्ष रूप से और कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से भी भारत के अन्य धर्मों व मतों को चुनौती देता रहा है। मेरे ख्याल से इसकी वजह केवल गुरु नानक की समानता और खुलेपन की शिक्षा ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनकी ये दृढ़ भावना भी है कि धार्मिक विश्वासों का पालन इस दुनिया में रहकर ही करना है और इसलिए इस दुनिया में बदलाव लाना हमारा दायित्व है। भारतीय धर्मों में ज्ञान की तलाश में भटकते रमते जोगियों का खास महत्व है। बुद्ध 6 वर्ष तक भ्रमण करते रहे और महावीर 12 वर्ष तक। हिंदू धर्म में भी ऐसे कई संत और योगी हुए हैं जो लगातार भ्रमण करते रहे। सभी ने संन्यास लिया और अपने परिवारों को त्याग दिया। आज के पाकिस्तान के लाहौर में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जन्मे गुरु नानक भी करीब 25 वर्षों तक जगह जगह घूमते रहे। गुरु नानक के जीवन से जुड़ी कथाओं, जन्म साखियों के अनुसार वो मध्य पूर्व में मक्का और मदीना तक गए और पौराणिक पर्वत सुमेरु तक भी जा पहुंचे। रास्ते में वो सम्राटों और नीची जाति के बढ़ई साधुओं और ठगों सभी से मिले। लेकिन गुरु नानक और बुद्ध या फिर महावीर में एक बड़ा अंतर है। गुरु नानक ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने देश यानी पंजाब की हरी भरी उपजाऊ धरती पर वापस लौट आए। बुद्ध या महावीर के विपरीत नानक के ज्ञान संसार में अपने पुराने गृहस्थ जीवन से जुड़े लोगों के लिए भी जगह थी। उनकी नजर में भक्ति व समर्पण के लिए संन्यास, संसार त्याग या धार्मिक गुरुओं और संस्थाओं से जुड़ना जरूरी नहीं है। सिख धर्म के विद्वानों के शब्दों में, श्रद्धा और समर्पण के लिए जो चीज जरूरी है वो है मर्यादित दुनियावी आचरण। लेखक नवतेज सरना वरिष्ठ भारतीय राजनयिक भी हैं। वो गुरु नानक की इस सांसारिकता की व्याख्या करते हैं।
He is supposed to have met a large number of very wise siddhas.
माना जाता है कि गुरु नानक ऐसे कई बुद्धिमान सिद्धों बुजुर्ग साधुओं से मिले जिन्होंने संसार छोड़ दिया था और वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नानक से पूछा, बालक दुनिया की क्या हालत है? इस पर नानक ने जवाब दिया, क्या हालत हो सकती है? जब सभी ज्ञानी मनुष्य यहाँ आ गए हैं तो आपको क्या लगता है वहाँ की हालत क्या होगी? इसी से आप समझ सकते हैं कि वे संसार को वास्तविक मानते थे। उनका मानना था कि इसी लोक में रहते हुए मोक्ष पाने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष के लिए कोई परलोक नहीं है। इस दुनिया को त्यागना कायरता है और आपको अपनी रोजी रोटी के जरिए ही मुक्ति मार्ग पर चलना है।
अपने जीवन काल में बाबा नानक के नाम से प्रसिद्ध नानक का जन्म 1469 में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता शायद मुनीम थे। उन्हें फारसी की शिक्षा भी दी गई। उस जमाने में फारसी की पढ़ाई जरूरी समझी जाती थी। शायद कोई मुस्लिम शिक्षक फारसी पढ़ाता होगा। अपनी पढ़ाई लिखाई की ही वजह से वो बाद में सैकड़ों सुंदर भजन व पद लिख सके। कर्म के महत्व पर रची गई इन पंक्तियों में शारीरिक श्रम पर खासा जोर दिया गया है।
मन हाली किरसाणी करणी सर्म पाणी मन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश, भाव कर्म करी जमसी से घर भागट देखू।
पत्रकार हरतोष सिंह बल कहते हैं,
Eventually liberation in Sikhism is to be attained by living the life of a householder through marriage, through work.
सिख धर्म में मुक्ति गृहस्थ धर्म निभाने से, विवाह करने, श्रम करने से ही प्राप्त हो सकती है। कीरत करणी का अर्थ है श्रम करना, अपने हाथों से मेहनत करना। एक जन्म साखी के अनुसार नानक किसी धनी व्यापारी के घर गए, लेकिन जब उन्होंने उस व्यापारी के हाथ देखे जो बेहद मुलायम थे और जिनमें शारीरिक श्रम के कारण गड्ढे नहीं पड़े थे, तो उन्होंने वहां भोजन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस घर में नहीं खा सकता।
नानक के समय का पंजाब, यानी जहां वो पले बढ़े, 16वीं सदी का कोई एकाकी देहाती इलाका नहीं था। भारत के उत्तर पश्चिम से गंगा के मैदानों तक तमाम संस्कृतियों के आगमन और हमलावरों के विजय अभियानों का यही मार्ग था। नानक के ही जीवन काल में तैमूर का वंशज एशियाई योद्धा बाबर पंजाब को रौंदता हुआ 1526 में दिल्ली पहुंचा और उसने खुद को पहला मुगल बादशाह घोषित किया। पंजाब धार्मिक आदान प्रदान का भी स्थल रहा है। लाहौर और मुल्तान जैसे शहरों में सूफी इस्लाम फला फूला। हालांकि ज्यादातर लोग हिंदू धर्म के ही किसी संप्रदाय को मानते रहे, लेकिन नानक की विश्व दृष्टि को जानने के लिए सिर्फ उन्हीं बातों को समझना जरूरी नहीं है जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया, बल्कि हमें यह भी देखना होगा कि उन्होंने किन किन बातों को स्वीकार नहीं किया। उनकी एक प्रसिद्ध सूक्ति है, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, यानी न तो कोई मनुष्य हिंदू होता है और न ही मुसलमान। ऐसा लगता है कि गुरु नानक निष्पक्ष भाव से विभिन्न धर्मों के बीच की बाधाओं को मिटाने की बात कर रहे हैं। इसे धार्मिक मेलजोल का संदेश भी माना जा सकता है, लेकिन ऐसा समझकर हम नानक की ललकार को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इस पद में नानक निष्क्रिय आक्रमण या प्रतिरोध का तरीका अपना रहे हैं। सच्चाई यह है कि वे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की बुनियाद पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण सद्भाव की वकालत नहीं कर रहे, बल्कि धर्मों को ही अस्वीकार कर रहे हैं। नानक से जुड़ी सभी कहानियों के अनुसार वो सज्जनता की मूरत थे, और वो ऐसे थे भी, लेकिन उनके उपदेशों में धार्मिक पाखंड पर करारा प्रहार है, और इससे हिंदू व मुस्लिम दोनों असहज महसूस करते हैं।
This is the area where the food for the langar is cooked. Huge pot.
इस जगह लंगर के लिए खाना पकता है। यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में दाल और सूजी का हलवा वगैरह रखा हुआ है और रसोइये बड़े बड़े कलछुलों से खाना चला रहे हैं। यहाँ किसी उद्योग की तरह काम हो रहा है। ये खाना सिर्फ सिख समुदाय के लिए ही नहीं है, बल्कि गुरुद्वारे में आने वाले हर व्यक्ति को ये भोजन परोसा जाएगा। कई दशकों से सुधार की तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी भारत के देहातों और शहरों में भी ऊंची जातियों के कई ऐसे लोग हैं जिनके बर्तन अगर कोई दलित छू ले तो वो उस बर्तन को ही तोड़ देंगे। किसी दलित या नीची समझी जाने वाली जाति या किसी और धर्म के व्यक्ति द्वारा बनाया गया खाना खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में एक साथ भोजन करना एक तरह से उन पुराने विचारों के खिलाफ विद्रोह है जिनका महत्व कम तो हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। नवतेज सरना कहते हैं,
इफ वन गॉड क्रिएटेड दिस होल क्रिएशन देन हाउ कुड ही हैव क्रिएटेड मेन डिफरेंटली ऑफ मेन एंड वुमन।
अगर इस सृष्टि को एक ही ईश्वर ने रचा है तो वो मानव मानव में स्त्री पुरुष में भेदभाव कैसे कर सकता है? यानी ये भेदभाव इंसान के बनाए हैं और जब आप फर्श पर बैठकर एक साथ पत्तल में भोजन करते हैं तो ये संदेश और भी रोशन हो उठता है। आज की दुनिया में ये बात बहुत सहज लगती है लेकिन 500 साल पहले के वक्त के बारे में सोचिए, जब अमीरी गरीबी का भेद तो था ही, समाज जातियों और उपजातियों में इस कदर बटा हुआ था कि आप अपने धर्म के लोगों के साथ भी बैठकर भोजन नहीं कर सकते थे। गैर धर्मों के साथ भोजन की तो भूल ही जाइए। उस समय लंगर का विचार कितनी बड़ी उपलब्धि, कितनी बड़ी बात रही होगी।
गुरु नानक ने अपनी शिक्षाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए गुरुओं की परंपरा विकसित की। सिख धर्म में कुल मिलाकर 10 गुरु हुए और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सैनिक पंथ खालसा पंथ की स्थापना की ताकि अपने पंथ अपनी रक्षा खुद कर सके। लेकिन इस सारी स्पष्टता के बावजूद सिख धर्म में यह अंतर्निहित विशिष्टता है कि वो स्थापित धर्मों और उनके रीति रिवाजों को नकारता है, उन्हें असमंजस में डाल देता है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में अन्य धर्मों से लिए गए कई पद हैं जिन्हें नए अर्थ दिए गए हैं।
नमस्कार, ओंकारनाथ श्रीवास्तव की ओर से श्रीमती इंदिरा गांधी नाम के आगे स्वर्गीया लगाते जबान कांपने लगती है, मगर कठोर सत्य से कौन मुंह चुरा सकता है। स्वर्गीया इंदिरा गांधी।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1984 में स्वर्ण मंदिर पर हमले का आदेश देने के कुछ महीनों बाद ही वो अपने सिख अंगरक्षकों की गोलियों का शिकार हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कई दिनों तक दिल्ली में सिख मारे जाते रहे। कई बरस के सैनिक दमन के बाद ही एक सिख अलगाववाद समाप्त हो पाया। इस पूरे संघर्ष के बाद सिखों में इतनी नाराजगी थी कि लगता था कि वो फिर कभी भारत को अपना नहीं समझ पाएंगे। लेकिन महज 20 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके पीछे सिखों की वो पारंपरिक व्यवहार कुशलता तो थी ही जो दृढ़ सिद्धांतों और सामंजस्य का अनूठा मेल है, साथ ही भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का लचीलापन भी काबिले तारीफ है।
मोहनलाल जी की ओर से पेश की गई फैलाओ जयरा की ये कड़ी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और खेल समाचारों में आपको बता दें कि आईपीएल से जुड़े विवादों और खुद बीसीसीआई की अंदरूनी राजनीति के बीच पूर्व अध्यक्ष शरद पवार और सचिव अनुराग ठाकुर की शह पाकर शशांक मनोहर बिना किसी चुनौती के अपने विरोधियों को मात देकर एक बार फिर बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके बावजूद उनके सामने बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें सुलझाने में उन्हें जी जान एक करनी पड़ेगी। क्या है उनकी चुनौतियां और कैसे वो उनसे निपटेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने दूसरे कार्यक्रम घटना चक्र में। इस वक्त सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने कहा कि वो चाहते हैं कि बिहार चुनाव में भाजपा की हार हो। जवाब में बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने कहा कि जेठमलानी अब चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की पैरवी करना चाहते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि सीरिया, रूस, ईरान और इराक के गठबंधन को सीरिया में सफलता मिलेगी। वहीं तुर्की और ब्रिटेन ने असद के समर्थन में रूस के सैनिक अभियान की आलोचना की है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्था मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स एमएसएफ के कर्मचारियों ने अफगानिस्तान के कुंदूज में अपने अस्पताल को छोड़ दिया है। दादरी में गोमांस पकाने की अफवाह पर मारे गए अखलाक अहमद के परिवार ने रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अखलाक के परिवार के लिए 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिन भर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला तिलक भाटिया ने। सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।